दिन भर 29 जून दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फतल। ग्रीस में आर्थिक संकट के चलते एक सप्ताह तक बैंकों को बंद रखने का फैसला। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास।
είναι πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού.
नरेंद्र मोदी के महिलाओं के प्रति रुख पर कविता कृष्णन के ट्वीट पर बवाल।
बल्कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फी विद डॉटर के हैशटैग्स के साथ वो महिला पक्षधर अपने आप को दिखाने के बजाय वो महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता को सच्ची जो मानसिकता है, महिला विरोधी जो मानसिकता है, उनकी महिला विरोधी मानसिकता को वो दर्शा रहे हैं।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। ग्रीस के गहराते आर्थिक संकट के बारे में यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जियां क्लॉड यंकर ने एक भावुक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीस के लोगों से उन्होंने अपील की कि रविवार को होने वाले जनमत संग्रह में यूरोजोन के सुझाए बेलआउट समझौते के पक्ष में वोट डालें। उन्होंने कहा कि अगर इसके खिलाफ वोट पड़े तो यह यूरोप के पक्ष में नहीं होगा। जियां क्लॉड यंकर ने यह भी कहा कि ग्रीस ने समझौते के लिए उनके प्रयासों को नहीं समझा और उन पर यूरोजोन के एक लोकतांत्रिक देश के खिलाफ 18 अन्य देशों को खड़ा करने का आरोप लगाया। ग्रीस की सरकार के एक प्रवक्ता ने जियां क्लॉड यंकर की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। वहीं ग्रीस के बैंकों को एक हफ्ते तक बंद करने के फैसले का प्रभाव यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों पर भी पड़ा है। यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि ग्रीस के लिए समझौते का रास्ता अब भी खुला है। ट्यूनीशिया के सूस शहर में शुक्रवार को चरमपंथी हमले में 38 लोगों की मौत के बाद आज एकत्रित हुए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्रियों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई। सूस के बीच रिसोर्ट पर शुक्रवार को एक बंदूकधारी ने गोलियां चलाकर 38 लोगों को मार गिराया था। ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री नाजिम घरसाली ने पत्रकारों से आज कहा कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी की गई है। सुरक्षा अधिकारियों ने हमलावर बंदूकधारी से जुड़े कथित संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बारे में ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री नाजिम घरसाली ने बताया।
We have arrested a number of cells.
हमने उस सेल के लोगों को गिरफ्तार किया है जो हमलावर से जुड़े थे। मैं पीड़ित परिवारों के लोगों से वादा करता हूं कि हमले के पीछे जो भी अपराधी और हत्यारे थे उनको न्यायालय के सामने लाया जाएगा ताकि इंसाफ हो सके और उन्हें सज़ा मिले, एक ऐसी सज़ा जो स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करे। ये थे ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री नाजिम घरसाली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक कार बम धमाके में सरकारी वकील हिशम बाराकात की मौत हो गई है। ये धमाका तब हुआ जब उनके साथ गाड़ियों का काफिला हेलियोपोलिस ज़िले से गुजर रहा था। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कई गाड़ियों और आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हिशम बाराकात के दो अंगरक्षक इस धमाके में घायल हुए हैं। पॉपुलर रेजिस्टेंस ऑफ गीज़ा नाम की एक कम जाने माने संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। बुरुंडी में राष्ट्रपति पियर नुकुरुनजीजा के तीसरी बार चुनाव लड़ने के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच संसदीय चुनावों के लिए मतदान हो रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने मतदान का बॉयकॉट किया है। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा के कुछ इलाकों में जहां विपक्षी मजबूत पकड़ है वहां मतदान काफी कम होने की खबर है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। यूरोपीय संघ से बातचीत असफल रहने के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास ने सभी बैंकों को पूरे हफ्ते बंद रखने का फैसला लिया है। इस फैसले से वैश्विक स्तर पर बाजारों में मंदी आ गई है। ग्रीस में 5 जुलाई को होने वाले जनमत में ग्रीस की जनता यह फैसला लेगी कि यूरोपीय संघ के सुझावों को माना जाए या नहीं। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने कहा है कि विफल हुई बातचीत में ग्रीस का रवैया धोखा देने वाला लग रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे संवाद का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
ग्रीस का वित्तीय संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीप्रास ने सभी बैंकों को पूरे हफ्ते बंद रहने को कहा है। इसके साथ ही एटीएम मशीनों से पैसा निकालने पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। सरकार का कहना है कि हफ्ते भर तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस दौरान खाताधारकों को दिन में 60 यूरो से ज्यादा निकालने की अनुमति नहीं होगी। लोग बिना पूर्व अनुमति के अपने पैसे को देश से बाहर भी नहीं भेज सकेंगे। यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ECB ने ग्रीस की बैंकिंग प्रणाली के लिए और आपात सहायता नहीं देने का फैसला किया है। ग्रीस और यूरोजोन के बीच बातचीत के विफल होने के बाद ECB ने यह फैसला लिया था। प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीप्रास ने यूरोप के बाकी देशों से ग्रीस के जनमत संग्रह के परिणाम आने तक रुकने के लिए कहा था, जिसके लिए यूरोप के देश राजी नहीं है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ECB के आपात सहायता नहीं देने के फैसले को अलेक्सिस सीप्रास ने ब्लैकमेल करने के बराबर बताया। उन्होंने कहा,
είναι πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού.
यूरोपीय सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद ये बात साफ है कि यूरोपीय संघ हमें ब्लैकमेल करना चाहता है और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को रोकना चाहता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीप्रास के शब्द। BBC के आर्थिक मामलों के संवाददाता एंड्रयू वॉकर के अनुसार ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीप्रास के पास कम ही रास्ते बचे हैं। ECB की घोषणा के बाद ग्रीस के बैंकों के ऊपर दबाव और बढ़ गया है। ग्रीस के बैंक जो पहले से ही केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर थे, उनके दरवाजों पर पैसा निकालने वाले चिंतित ग्राहकों की कतारें लग गई हैं। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉन क्लॉड जंकर के मुताबिक ग्रीस का रवैया धोखा देने वाला लग रहा है। उन्होंने कहा,
Après tous les efforts que j'ai déployés, après tous les efforts qui furent ceux de la Commission et aussi des autres institutions impliquées,
मेरी और यूरोपीय कमीशन की और प्रक्रिया से जुड़े सभी संस्थानों की कोशिशों के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ धोखा हुआ हो, क्योंकि हमारी कोशिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉन क्लॉड जंकर के शब्द। ग्रीस के लोगों को डर है कि उन्हें उनके पैसे निकालने से रोक दिया जाएगा या फिर उनकी यूरो मुद्रा को ग्रीक की करेंसी ड्रॉकमा में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। फ्रांस के मंत्रिमंडल के समक्ष भाषण देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कहा,
Il y a encore quelques heures avant que la négociation soit définitivement close pour
अभी बातों के खत्म होने में वक्त बाकी है और ग्रीस को सहायता देने के रास्ते अभी खुले हैं। सरकार फैसला ले ले तो बातचीत फिर से शुरू हो। इसका फैसला अब केवल ग्रीस के लोगों के हाथ में है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के शब्द। ग्रीस को मंगलवार तक एक बड़ा भुगतान करना है और भुगतान की अवधि समाप्त होने पर ग्रीस दिवालिया होने के करीब आ जाएगा। सीप्रास ने यूरोजोन के अन्य देशों की कड़ी निंदा की है। ग्रीस के प्रधानमंत्री सीप्रास ने टीवी पर भाषण में जनता को शांति बनाए रखने को कहा है और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पैसे, वेतन और पेंशन सुरक्षित हैं।
ग्रीस में पूरे हफ्ते तक सभी बैंक बंद। उधर अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं कि पश्चिमी हेरात प्रांत में तालिबान प्रतिबंधवादियों ने 11 सैनिकों को मार डाला है। स्थानीय सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि सैनिक एक ट्रक पर जा रहे थे, तभी उन पर घात लगाकर हमला किया गया। हमारे साथी इकबाल अहमद ने काबुल फोन कर BBC संवाददाता सईद अनवर से बात की और पूछा कि ये हादसा कितना बड़ा था।
इकबाल साहब, ये हमला तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस तरह एक ही हमले में, तालिबान की एक ही हमले में 11 अफगान फौजी अहलकार मारना है बताते खुद बड़ा हादसा, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला नहीं है। इससे पहले इससे कई ज्यादा हमले हुए हैं या इस तरह के गार्ड में बैठकर वो अचानक हमला करते हैं अफगान फोर्सेस पर। बहरहाल ये हादसा अफगानिस्तान के मगरबी प्रांत हेरात में गुज़श्ता रात पेश आया, जिसमें एक अफगान फौज का एक अफसर और 10 सिपाही इस हमले में हेरात के जिला करूख में मारे गए हैं। और ये मकामी हुकाम ने तस्दीक किया है कि इस हमले में 11 अफराद अफगान आर्मी के वो अपनी जानें खो बैठे हैं।
पिछले कुछ दिनों में तालिबान के हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, इजाफा देखा जा रहा है।
बिल्कुल, पिछले कुछ बल्कि एक महीने में तालिबान के हमलों में तेजी आई है। खासकर इस बार शिमाली सूबों में तेजी आई है। आपको मालूम है कि शिमाली प्रांत कुंदूज में तालिबान ने 2 जिलों पर एक हफ्ते के अंदर अंदर कब्जा कर लिया और इसी तरह शिमाली सूबे बदख्शान में एक जिले पर कब्जा कर लिया। कुंदूज में जिला चारदरा में तकरीबन गुज़श्ता 2 हफ्तों में बहुत शदीद लड़ाई जारी थी اور ضلع کی ہیڈ کوارٹر تقریباً دو بار طالبان کے ہاتھ لگئی اور پھر افغان فورسز نے قبضہ کر لیا. بہرحال لڑائی وہاں ضلع چاردرا میں بہت شدید تھے, اور اب افغان حکام کا کہنا ہے کہ ضلع چاردرا کا ہیڈ کوارٹر افغان فورسز کے کنٹرول میں ہے, اور طالبان کے 60 سے زیادہ جنگجو چاردرا میں مارے گئے جس میں غیر ملکی شدت پسند بھی شامل تھے.
سعید انور صاحب, طالبان کے حملوں میں جو تیزی دیکھی جا رہی ہے, آخر کیا وجہ اس کی آپ کو لگتی ہے؟
دو وجہ بہت واضح ہے. ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے رسمی طور پر اعلان کیا کہ وہ رنگ اوفینسو انہوں نے شروع کیا ہے, جسے مقامی لینگویج میں بہاری آپریشن کہا جاتا ہے. اور طالبان جب بھی بڑے آپریشن کرتے ہیں یا جہاں بھی افغان فورسز پر حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی وہ کارروائی کرتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ان کے سپرنگ اوفینسو کا حصہ ہے. دوسری جانب افغانستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا مسئلہ بھی جاری ہے, اور گزشتہ دو مہینے میں 3 ممالک پر مقدماتی طور پر طالبان اور افغان شہریوں کے درمیان, جس میں ایک دو بار افغان حکام بھی شامل تھے, غیر رسمی بات چیت ہوئے ہیں. تو ایک فرضیہ یہ ہے کہ طالبان چاہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو پاور میں حصہ لینا ہے تو کچھ لڑائی میں تیزی لانا چاہیے, تاکہ جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں تو وہ اور ان کی ڈیمانڈ بڑا ہونا چاہیے.
یہ تھے کابل سے بی بی سی سنواد داتا سعید انور. سماجک کارکرتا کویتا کرشنن کے کل کے نریندر مودی ویرودھی ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں گالیاں اور دھمکیاں مل رہی ہیں. پردھان منتری نریندر مودی نے کل من کی بات کارکرم میں ہر باپ سے اپنی بیٹی کے ساتھ سیلفی تصویر بھیجنے کو کہا تھا. اس پر کویتا کرشنن نے ٹویٹ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مہیلاؤں کا پیچھا کرنے کا نریندر مودی کا پرانا ریکارڈ رہا ہے. آج ہمارے ساتھی زبیر احمد نے انہیں فون کیا اور پوچھا کہ کیا سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کڑے ویرودھ سے وہ پریشان ہیں اور الگ تھلگ محسوس کر رہی ہیں؟
نہیں, بالکل نہیں ہے. دراصل بہت سارے ایسے لوگ ہیں دیکھیے جو کہ جنہوں نے سپورٹ بھی ویکت کیا ہے, کہیں مانے نارمل سے کہیں زیادہ لوگوں نے. تو جو یہ اٹیک کر رہے ہیں, دیکھیے زیادہ تر لوگ, اس میں خاص کر کے جو لوگ ابیوزو ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں, وہ سب فیک ہینڈل سے جو نریندر مودی کی ٹویٹر سینا ہے بھاجپا کی, نریندر مودی کی سنگھ پریوار کی, یہ ان کے حملے ہیں. ان کو تو میں بالکل سیریسلی لیتی ہی نہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیلفی وتھ ڈاٹر کے ہیش ٹیگز کے ساتھ وہ مہیلا پکشدھر اپنے آپ کو دکھانے کے بجائے وہ مہیلاؤں کے پرتی اپنی مانسکتا کو, سچی جو مانسکتا ہے, مہیلا ویرودھی جو مانسکتا ہے, جس میں وہ بلاتکار کے سندیش اور گندے گندے سندیش دے رہے ہیں مجھے, اس میں ان کی مہیلا ویرودھی مانسکتا کو وہ درشا رہے ہیں. اس لیے میں تو سواگت کرتی ہوں ان سبھی ٹویٹس کا اور ان سبھی ابیوز کا.
تو آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہے؟
میں بالکل ڈر نہیں لگ رہا ہے. میرے کچھ نزدیک پریوار کے لوگ اور کچھ لوگوں نے ضرور سمپرک کیا ہے مجھ سے کہ آپ ذرا دھیان سے رہیے گا اور ٹیک کیئر اور سب کچھ ضرور ملا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا, مجھے لگتا ہے یہ میں نے نئی بات یا پہلی بار کہا نہیں ہے.
جو آپ نے ٹویٹ کیا اس میں کیا مراد تھی؟ وہ کیا سنوپ گیٹ کا اس میں حوالہ تھا؟
بالکل بالکل, سنوپ گیٹ کا ہی حوالہ تھا میرا کہنا. تو میں اس کے بعد بھی ٹویٹ کر چکی ہوں ان باتوں کو بتاتے ہوئے اور لنک شیئر کرتے ہوئے, لوگ ضرور دیکھ لیں. میرا کہنا تھا اس میں کہ اس میں سنوپ گیٹ میں پتا لگا تھا کہ امیت شاہ کی آواز سنائی دیتی ہے پولیس والوں کو, انٹیلیجنس والوں کو کہتے ہوئے کہ صاحب جاننا چاہتے ہیں, اسی لیے اس لڑکی کے فون کی آپ ٹیپنگ کر کے آپ بتائیے کہ وہ کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, خاص کر کے کن پروشوں سے مل رہی ہے, اتیادی اتیادی ان ساری چیزوں کی جو ڈیٹیلز وہ مانگ رہے ہیں. بھاجپا کو جب پوچھا گیا ان کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے, ان کے پتا نے کہہ دیا ہے کہ ان کو کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے, وہ ان کی لڑکی کی سرکشا کے لیے.
اور سپریم کورٹ نے بھی شاید اس کو خارج کر دیا.
سپریم کورٹ نے خارج, دیکھیے یہ کہنا پڑے گا, سپریم کورٹ نے اس ٹیپنگ کے الیگل لیگل ہونے کو ایکسپلور کیا ہی نہیں ہے, ایگزامن ہی نہیں کیا. اس لیے ہر ناگرک کا سوال ہے کہ وہ ایک جرم کو جو راجیہ نے کیا ہے ایک ناگرک کے خلاف, اس جرم کا خلاصہ مانگے. اور میں بہت سمپل سوال اس میں کی ہوں कि लीगल था या इलीगल था वो फोन टैपिंग जो उस महिला का किया गया था।
आपका उद्देश्य क्या था, क्यों आप इस तरह के ट्वीट्स कर रही हैं?
मेरा उद्देश्य ये था कि महिला पक्षधर होने का नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का जो दावा है, उन पर मैंने कई सवाल उठाए थे। उसमें एक था ये स्नूपगेट से रिलेटेड, दूसरा था मेरा राखी से रिलेटेड, जिसमें मैंने और जगह भी कहा है इस बात को कि रक्षाबंधन को रक्षा के नाम पर बंधन बनाने वाले जो संघ परिवार के लोग हैं, खाप पंचायत के लोग हैं, उनके खिलाफ तो मुंह नहीं खुलता है नरेंद्र मोदी जी का, वो आवाज नहीं उठाते हैं इस पर। वो सब रक्षा के नाम पर वो ऑनर किलिंग्स और तमाम चीजें होती हैं कि हम तो ऑनर की रक्षा कर रहे हैं और हम महिला की रक्षा कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि गुजरात में भी, मुजफ्फरनगर में भी ढेर सारी महिलाओं का, ढेर सारी बेटियों का रेप हुआ। उन सारे रेप्स पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल मौन है, बिल्कुल चुप है। इस पर भी मैंने सवाल उठाया। और एक अंतिम सवाल मैंने उठाया था कि रक्षाबंधन के नाम पर वो अपने कैबिनेट में और भाजपा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनकी रक्षा करने पर आमादा हैं, फेक एनकाउंटर करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। शायद रक्षाबंधन के यही मायने हैं नरेंद्र मोदी के।
सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश प्रियदर्शी और इंदु पांडे।
आपकी चिट्ठियों के साथ आपकी राय में हाजिर हैं, मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे।
नमस्कार, और मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
तो चलिए चिट्ठियों की शुरुआत करते हैं अनुराग शुक्ल की चिट्ठी से, जो आई है रोहतास बिहार से। कहते हैं कि आपात
रोहतास बिहार से इन्होंने पत्र लिखा है या मेल किया है?
इन्होंने मेल किया है।
ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि अब दूर दूर से भी हमारे श्रोता, जिनको हम दिल्ली मुंबई के ही श्रोता नहीं है बल्कि हर तरफ से हमें ईमेल से चिट्ठियां मिलने लगी हैं, जो कि एक अच्छी बात है।
जी, लिखते हैं कि आपातकाल पर आपकी श्रृंखला काफ़ी अच्छी लगी। सुब्रमण्यम स्वामी और कुलदीप नैयर के अनुभव ने काफ़ी कुछ सिखाया और एहसास कराया कि कुछ भी हो, आपातकाल तानाशाही दिमाग की शैतानी उपज थी। और आगे लिखा है कि कभी लालू और नीतीश को साथ लाइए, उनके अनुभव को भी हम जानना चाहते हैं।
लालू और नीतीश को साथ लाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो खुद साथ आ गए हैं। ये राजनीति है, सियासत है कि वो उनको साथ ले आइए। हाँ, हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम दोनों से विस्तृत बातचीत आपको सुनवा सकें बिहार के चुनाव से पहले। जाहिर है कि वो बहुत प्रासंगिक भी होगा।
जी, इलाहाबाद से अखलाक अहमद का मेल आया है। कहते हैं कि आपकी राय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, ये खुद करना चाहते हैं। और मोहनलाल शर्मा के लिए कहते हैं कि ही वॉज अमेजिंग।
मोहनलाल जी अमेजिंग हैं, सचमुच हैं, और वो जिस मेहनत से काम करते हैं और वो जितने सधे हुए ब्रॉडकास्टर हैं, हम सब जानते हैं। आपकी ये जो शुभकामना है, आपका ये जो आपकी प्रशंसा है, वो हम मोहनलाल जी तक पहुँचा देंगे।
कुल मिला के इनके मेल में यही था। जी, आगे हमारे पास ये मेल है प्रदीप सिंह का, ममफोर्डगंज
जी
इलाहाबाद से।
जी,
लिखते हैं कि पूरी टीम को नमस्कार, और कल यानी कि 26 जून को जो मोहनलाल शर्मा जी द्वारा प्रसारित दिन भर था, वो उसकी बहुत तारीफ की है, कहते हैं कि वो लाजवाब था।
आज मोहनलाल जी का दिन है, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है।
बहुत सारी चिट्ठियां उनके लिए।
जी,
आगे लिखा है कि विशेष करके रेहान फजल जी की इमरजेंसी की जो विवेचना थी वो भी बहुत अच्छी लगी। और बीबीसी के लिए कहते हैं कि बीबीसी नायाब हीरा है।
इमरजेंसी का दौर वो दौर है जिस दौरान बीबीसी के लिए एक मौका था पत्रकारिता का और निष्पक्ष पत्रकारिता करने का, और बहुत सारे बीबीसी के अलावा दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी अपनी भूमिका निभाई। और अब 40 साल पूरे होने के बाद हमारे लिए एक मौका था उस दौर को पलट के देखने का और आपको याद दिलाने का कि लोकतंत्र की खुली हवा में सांस लेना अपने आप में कितनी बड़ी नियामत है और कितनी मुश्किल होती है जब आपकी जो मौलिक स्वतंत्रता है, जो मौलिक अधिकार हैं, जब वो छिन जाते हैं।
और रेहान फजल की तारीफ की है आपातकाल पे जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से, और ये हमारे बहुत ही रेगुलर श्रोता हैं। और ये हैं लोकेश कुमार, इनका मेल ये आया है धनबाद से, और कहते हैं कि आज की पहली सभा में न्यूयॉर्क में मुसलमानों के बारे में रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी। आपकी टीम हर बार गंभीर एवं रोचक विषयों को उठाकर बीबीसी के स्तर को बनाए रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। बस इन्होंने तारीफ लिखी है।
बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है इनका? लोकेश जी, ये देखिए ये भी गौर करने वाली बात है कि लोकेश जी ने इस कार्यक्रम की तारीफ की है, और ये बहुत संभव है कि इस कार्यक्रम की आलोचना भी हो कि आप हमेशा अपने कार्यक्रमों में मुसलमानों की बात ज़्यादा करते हैं और ईसाइयों की बात ज़्यादा करते हैं या महिलाओं की बात ज़्यादा करते हैं। लेकिन देखिए जो श्रोता हैं, जो मुसलमान हों या ना हो, उनको अगर कार्यक्रम में कुछ रोचक बात हो, कोई दिलचस्प चीज़ हो या कोई ज्वलंत मुद्दा हो, तो उनको जाहिर है ऐसे कार्यक्रम पसंद आते हैं। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों पर शिकायतें भी बहुत आती हैं
जी। एक शिकायत है रिजवान अंसारी साहब की सुपौल दरभंगा से, कहते हैं कि बीबीसी कृषि क्षेत्र की बदहाली पर इतना मौन क्यों रहता है।
नहीं, हम मौन नहीं रहते। किसानों की आत्महत्या का मामला है या किसानों के जो संघर्ष हैं, अभी हाल में मुझे याद है खुद ही बीबीसी हिंदी रेडियो पर भी और हमारे सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर, हमने किसानों की जो तकलीफ है उनकी डायरी सिलसिलेवार प्रसारित की थी। किसानों ने खुद बताया था कि उनकी क्या तकलीफें हैं। तो हम जब भी मौका मिलता है हम किसानों की हालत और कृषि की जो मुश्किलें हैं उन पर कार्यक्रम करते रहते हैं वक्त पे, जब जब मौका मिलता है।
और ये हैं रविंद्र ठाकुर झारखंड हजारीबाग से, कहते हैं कि जो आपने अपने बीबीसी का कलेवर बदला है, बीबीसी का बहुत पसंद आया है इन्हें, बस धुनें अच्छी नहीं लगी इनको, उसमें कहते हैं बात नहीं बनी।
संगीत बहुत ही एक तरह से सब्जेक्टिव चीज़ है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आती हैं। हमने कोशिश ये की कि अपने दफ्तर में हम सब लोग उसको बारी बारी से सुने, जितने लोग सुन सकते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने जिसको पसंद किया उसी को हमने अपना उन कार्यक्रमों की धुन बनाया। और ये असंभव था कि हम ऐसी कोई धुन कहीं से ला सकें जो सबको पसंद आए
जी। आगे लिखा है कि यूं तो रेहान फतल साहब की विवेचना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भविष्य में यदि निखिल रंजन यूं ही दुनिया जहान पेश करते रहे तो हो सकता है कि वो रेहान फजल को चुनौती दे।
अच्छी बात है, निखिल जी को बता दिया जाए कि उनकी तारीफ हो रही है, और रेहान को भी बता दिया जाए कि उन्हें चुनौती मिल सकती है। ये पत्र हमें भेजा था रविंद्र कुमार ने। और अगर आप हमें पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है, डाक से अगर आप पोस्टकार्ड भेजना चाहें, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल भेजना चाहें तो हमेशा की तरह हमारा ईमेल एड्रेस है hindi.letters@bbc.co.uk। आज बस इतना ही। इंदु पांडे को और राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए।
नमस्कार।
अनुभवी ऑफिस स्पिनर हरभजन सिंह ने 4 साल के बाद आज एक दिवसीय टीम में वापसी की है, जबकि चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे के अगले महीने के दौरे के लिए कई सीनियर खिलाड़ियों को विश्राम दिया है। विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन ओथप्पा को भी टीम में वापस लाया गया है, जबकि तेज गेंदबाज संदीप शर्मा और लेग स्पिनर कर्ण शर्मा को भी अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम में शामिल किया गया है। सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के जहन में ये ख्याल बार बार लौट रहा होगा। इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया और विश्व कप में टीम से बाहर रहे भज्जी का करियर खत्म समझा जा रहा था, लेकिन एकाएक आईपीएल में उनका सितारा चमका, जिसके चलते मिला बांग्लादेश दौरा और लौट आया फॉर्म भी। 10 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली एक दिवसीय और T20 श्रृंखला में भज्जी भारतीय टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य बनकर खेलने वाले हैं। अब जरा अजिंक्य रहाणे की किस्मत पर नजर दौड़ाइए। ओपनर के तौर पर शुरुआती क्रिकेट खेलने वाले रहाणे को इसी महीने खत्म हुए बांग्लादेश दौरे में मौका मिला। पहले एक दिवसीय मैच में उन्होंने 9 रनों का योगदान दिया और कप्तान धोनी ने उनको दूसरे मैच में बाहर बैठा दिया। धोनी का तर्क था कि रहाणे कुछ पिचों पर अच्छा खेलते हैं, लेकिन कुछ पिचों पर उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने में मुश्किल होती है, अभी उन्हें थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन आज शायद कप्तान धोनी खुद अपने उस बयान को कोस रहे होंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे के आगामी दौरे के लिए अजिंक्य रहाणे कप्तान होकर जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही होगी इस फैसले के पीछे, सुनिए क्रिकेट विश्लेषक अयाज मेमन को।
देखिए, अजिंक्य रहाणे वो स्क्वाड में तो थे ही, वनडे टीम में, वर्ल्ड कप में भी खेले हैं। अब जब 7-8 सीनियर प्लेयर्स नहीं जा रहे हैं तो किसी ने, अगर वो टीम में है तो जाहिर है कि किसी ने किसी को कैप्टन बनाना है। मेरे ख्याल से उनके पास चॉइस दो ही थे, या तो आप हरभजन सिंह को बनाए कैप्टन, लेकिन उनकी वापसी हो रही है टीम में और ये प्रेशर ज्यादा हो जाता था उनके लिए, या अजिंक्य रहाणे को। तो मेरे ख्याल से सही डिसीजन है।
हालांकि धोनी, कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन और रैना जैसे खिलाड़ी पिछले कई महीनों से लगातार क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें आराम दिया जाना लाजमी था, लेकिन रविंद्र जडेजा का टीम से ड्रॉप किया जाना भी कोई छोटा संकेत नहीं है। जडेजा T20 और एक दिवसीय क्रिकेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और चयनकर्ताओं ने साफ कह दिया है कि जडेजा आराम वाली लिस्ट का हिस्सा नहीं है, यानी उनको ड्रॉप किया गया है। जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से IPL खेलते हैं और वहां पर धोनी उनके कप्तान हैं। बांग्लादेश दौरे में मिली हार के बाद धोनी ने यहां तक कहा था कि मेरे कप्तानी छोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं बतौर खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार हूं। धोनी के इस बयान पर हुए विवाद के बावजूद टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स में उनके सहयोगी खिलाड़ियों सुरेश रैना और आर अश्विन ने खुलकर उनका बचाव भी किया था। क्रिकेट प्रशासक और इंडिया सीमेंट्स के मालिक एन श्रीनिवासन की भी मुश्किलें पिछले एक वर्ष में बढ़ी लगती हैं और वे चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक भी हैं। अयाज मेमन को लगता है कि कुछ बदलाव तो दिख रहा है।
देखिए, ये कहना अब इस वक्त बहुत मुश्किल है कि दबदबा उनका है अब तक है या नहीं या समाप्त हो गया है, क्योंकि एक रविंद्र जडेजा को छोड़कर, और रविंद्र जडेजा इस टीम में नहीं है जिम्बाब्वे के दौरे पर, ना T20 टीम में ना वनडे टीम में। तो अश्विन है अभी भी, सुरेश रैना है जो वनडे इंडिया के लिए खेलते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब श्रीनिवासन का कोई मामला अभी भी बाकी है। अब तो खैर टीम इंडिया है, IPL जब खेला जाएगा तब श्रीनिवासन या इंडिया सीमेंट फिर फैक्टर कर सकते हैं।
बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद श्रीनिवासन को BCCI अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और ICC प्रमुख का भी उनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। इशारे साफ कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट में बदलाव खासा तेज हो रहा है। क्रिकेट वाकई में अनिश्चितताओं का खेल है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। और विश्व की चार बड़ी टेनिस प्रतियोगिताओं में से एक विंबलडन आज शुरू हो गई है। पुरुषों में जोकोविच और महिलाओं में सेरेना विलियम्स को शीर्ष वरीयता दी गई है। आइए सीधे चलते हैं विंबलडन अपूर कृष्ण के पास। अपूर, बताएं क्या समाचार है आपके पास, कौन कौन से मैच हो रहे हैं या हो चुके हैं?
जी रेहन साहब, बड़े अच्छे मौसम में शुरुआत हुई है विंबलडन की। काफी खिली हुई धूप है और बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर आज दर्शकों को। और आज पहला ही मैच, पहले ही दिन जो पिछली बार के विजेता हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उनका मैच था और अभी अभी ये मैच खत्म हुआ है। जर्मनी के फिलिप कोलश्राइबर को उन्होंने सीधे 3 सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। ये एक तरह से जोकोविच के लिए बहुत ही कड़ा ड्रॉ था जो जर्मन प्लेयर हैं, और जोकोविच के लिए भी काफी राहत की बात है क्योंकि अभी इस साल काफी अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन फ्रेंच ओपन में जिस तरह से उन्हें हार मिली स्टैन वावरिंका जर्मनी के, उसके बाद से काफी चिंता हो रही थी क्योंकि जोकोविच ने उसके बाद कोई भी ग्रास कोर्ट का मैच नहीं खेला था। तो जोकोविच के लिए राहत की बात, उनका मैच पूरा हुआ। और अब एक और मैच चल रहा है पुरुषों का, लेटन हेविट जो 2002 के चैंपियन है उनका मैच चल रहा है, उसमें से जो जीतेगा उसके साथ जोकोविच का मुकाबला होगा दूसरे दौर में। पुरुषों के वर्ग में आज एक और मैच होना है, स्टैन वावरिंका 4th सीड है उनकी और वो फ्रेंच ओपन के विजेता हैं, उनका मैच अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। तो ये दो बड़े मैच हैं आज पुरुषों के।
और महिलाओं में क्या सीन है, कोई मैच शुरू हुआ है आज, कौन कौन से मैच होने वाले हैं?
जी, आज सबसे पहले, सबसे जो नंबर वन है दुनिया की प्लेयर सेरेना विलियम्स, उनका मैच था और उन्होंने आसानी से अपनी प्रतिद्वंदी जो है रूस की मार्गरेटा गैस्परमान, उनके साथ उनका मैच था। उन्होंने आसानी से उन्हें 6-4, 6-1 से हरा दिया। और सेरेना के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि वो दो बार जो इस साल के जो पहले दो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, जीत चुकी हैं। और इस बार विंबलडन उनके लिए खास है क्योंकि माना जा रहा है कि अगर वो विंबलडन जीतती हैं और उसके बाद US ओपन जो उनका, जिसमें उनकी महारत है, अगर वो भी जीतती हैं तो ये उनके लिए बहुत एक बड़ा मुकाम होगा, चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं एक बार में ही जीतने का। और सेरेना के अलावा जो मैच खत्म हुआ सेरेना विलियम्स का, वो जीत गई है। उसके बाद नंबर 4 दुनिया की खिलाड़ी मारिया शरापोवा और 2004 की चैंपियन, उनका ही मैच अभी शुरू हुआ है। रेहान,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपूर्व कृष्ण। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
ग्रीस के बैंकों को एक हफ्ते तक बंद करने के फैसले के बाद यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा है कि ग्रीस के लिए समझौते का रास्ता अब भी खुला है। ट्यूनिशिया में बीच रिसॉर्ट पर हमले के मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने हमलावर बंदूकधारी से जुड़े कथित संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक कार बम धमाके में सरकारी वकील हिशम बारकात की मौत हो गई है। बुरुंडी में राष्ट्रपति पियर नुकुरुंजीजा के तीसरी बार चुनाव लड़ने के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने मतदान का बॉयकॉट किया है। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा के कुछ इलाकों में जहां विपक्ष की मजबूत पकड़ है, वहां मतदान काफी कम होने की खबर है। सीरिया की सरकारी सेना ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले उत्तर पूर्वी शहर हास्का को वापस पा लिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। थोड़ी देर बाद 9:30 बजे आपसे फिर भेंट होगी घटना चक्र कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की कुणाल शर्मा ने। रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।